हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ध्रुव ने सारा के कहने पर मीटिंग अटेंड कर ली थी और सारा ने उसे जिस मकसद से भेजा था उसमें वो कामयाब भी रहा। ध्रुव ने सीक्रेट किंग की आइडेंटिटी के बारे में पता लगा लिया था। वो सीक्रेट किंग कोई और नहीं, उसके फेवरेट और आइडल प्रोफेसर मौलिक मल्होत्रा था। मीटिंग के दौरान ध्रुव ने एक तरह से अपनी जान खतरे में डाल दी थी, लेकिन युग एन समय पर वहां पहुंच गया था और उसने ध्रुव को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया था। घर आने के बाद ध्रुव याशी के साथ उसके कमरे में था। याशी ध्रुव से बात करना चाहती थी, लेकिन उसका मन तो मौलिक में उलझा था। ध्रुव को खोया हुआ देखकर याशी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, भाई आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं? इससे ध्रुव को होश आया। वो जल्दी से सिर हिलाकर बोला, बिल्कुल सुन रहा हूँ एंजल, बताओ क्या कहना है तुम्हें? क्या डैड अब आपसे गुस्सा नहीं है? भाई वो आपसे इसीलिए नाराज है क्या, क्योंकि आप शादी करने जा रहे हो? अगर मैं भी शादी करूंगी तो क्या वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे और मुझसे बात नहीं करेंगे? वो मेरी शादी में भी नहीं आएंगे क्या? याशी के मासूम सवाल फिर से शुरू हो गए थे। इस मामले में वो बिल्कुल कृषा की तरह थी। उसकी बातें सुनकर ध्रुव के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने याशी के गाल पर किस किया और कहा, तुम बहुत क्यूट हो, मेरे और डैड की फाइट पर ज्यादा ध्यान मत दो। मैंने तुम्हें बताया ना, हम दोनों के बीच ऐसा चलता रहता है। रही बात तुम्हारी शादी की, तो अभी तुम बहुत छोटी हो, लेकिन फ्यूचर का भी तो सोचना पड़ता है ना भाई। मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे मेरे डैड हर्ट हो। मुझे पहले ही बता दीजिए डैड को कैसे मनाना है ताकि वो मेरी शादी में आए, याशी उसके सीने से अपना सिर उठाकर बोली। ध्रुव ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। वो सिर्फ 8 साल की थी और देखने में तो उससे भी छोटी नजर आती थी। युग तो क्या अब तक ध्रुव ने भी याशी की शादी का इमेजिन नहीं किया था। मेरा पता नहीं एंजल, लेकिन तुम्हारे लिए सच में बहुत मुश्किल रहने वाला है। तुम्हें डैड और मुझे दोनों को मनाना होगा। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों में से कोई भी तुम्हें किसी और के पास जाने देगा। डैड तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ध्रुव ने काफी सीरियस अंदाज में कहा। याशी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो मासूमियत से बोली, तो क्या फिर डैड मुझे शादी नहीं करने देंगे? मुझे उनके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूर करने देंगे, लेकिन तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। अभी तुम छोटी हो इसीलिए तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हो। जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन समझ आ जाएगा कि याशी राणा से शादी करने वाला सच में स्पेशल इंसान होगा। अगर वो नहीं भी होगा तो उसे बनना पड़ेगा, ध्रुव ने प्यार से समझाते हुए बोला। इससे पहले कि उसके सवाल वापस शुरू होते, ध्रुव ने उसे पकड़कर जल्दी से बेड पर लिटाते हुए कहा, चलो अब बातें बहुत हो गई हैं। स्कूल चेंज होने वाला है, लेकिन सिर्फ तुम्हारा ही नहीं होगा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को भी तुम्हारे स्कूल में ट्रांसफर करने का इंतजाम हो गया है, सो डोंट वरी, अब बिना सवाल के सो जाओ। ध्रुव प्यार से याशी के बालों में हाथ फेरने लगा, जिससे कुछ देर बाद उसे नींद आ गई थी। याशी के सभी दोस्तों और टीचर्स के बारे में युग खबर रखता था। वो सिर्फ एक लड़की के सबसे ज्यादा क्लोज थी, और जब भी याशी का स्कूल चेंज होता उस लड़की का भी स्कूल चेंज किया जाता था। उसका सारा एजुकेशन फंड युग ही देख रहा था। वो नहीं चाहता था कि याशी बार बार स्कूल चेंज करने पर अकेलापन महसूस करे। कुछ देर में याशी को नींद आ गई तो ध्रुव भी उसके पास वहीं पर लेट गया। अब उसके दिमाग में तारा नहीं बल्कि मौलिक चल रहा था। उसी के बारे में सोचते हुए कुछ ही देर में ध्रुव भी नींद के आगोश में था। अगली सुबह लगभग 9 बजे के करीब वे सब साथ में लिविंग एरिया में इकट्ठा थे। याशी वहां से अपने स्कूल के लिए निकल रही थी। हालांकि युग और मलिक फिलहाल के लिए उसके साथ जा रहे थे, लेकिन फिर भी वे एक इमोशनल मोमेंट शेयर कर रहे थे। कृषा ने याशी को गले लगाया और नम आंखों से कहा, तुम्हें ये तो नहीं लगता ना कि तुम अकेली हो? हम सब तुम्हारे साथ हमेशा हैं। जब भी तुम्हें याद आए तो बस एक कॉल कर देना, हम आ जाएंगे। कृषा याशी की हालत को समझ सकती थी। उसे भी अपने परिवार से अलग अर्जुन के साथ रहना पड़ता था। यहाँ तो याशी बिल्कुल अकेले रहती थी और वो काफी छोटी भी थी। याशी कृषा से अलग हुई और अपने छोटे छोटे हाथों से उसके चेहरे को पकड़कर बोली, आप रोना बंद करो वरना आपको रोते हुए देखकर भाई के चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज होने लगेंगे। वो मुझ पर गुस्सा करेंगे कि मैंने आपको रुला दिया। वेरी बैड एंजल, मैंने कभी तुम पर गुस्सा नहीं किया। हाँ, पर मुझे कृष की आंखों में आंसू भी नहीं देखने हैं, ध्रुव ने झट से कहा। याशी उसकी तरफ देखकर हल्का सा हंस रही थी। जब भी वो उनसे दूर जाती कृषा ऐसे ही उसे रोते हुए गुड बाय कहती थी। इससे पहले कि कृषा आंसू बहाते हुए और कुछ कहती, युग ने याशी को अपनी गोद में उठाया और कृषा की तरफ देखकर कहा, अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो इसके साथ तुम्हारा भी एडमिशन करवा दूंगा, एक छोटी मोटी जॉब तो तुम्हें मिल भी सकती है। कम ऑन डैड, कृष की टांग खींचना बंद कीजिए, ध्रुव ने कृषा के पास आकर जवाब दिया और उसे चुप करवाते हुए अपने सीने से लगा लिया था। फिर उसने याशी की तरफ देखकर कहा, मेरी एंजल बहुत ब्रेव है, इसने मुझे प्रॉमिस किया है कि ये अपनी स्टडी अच्छे से कंप्लीट करेगी, जल्द ही हम सब साथ रहने लगेंगे। और दूसरी बात, हम हमेशा इससे कॉल पर बात करते हैं, जब भी इसे हमारी याद आती है हम इससे मिलने के लिए भी आते हैं, है ना एंजल? सच कहा मैंने? बिल्कुल भाई, याशी ने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर उन सबको बाय बोलकर युग के साथ गाड़ी में आ गई थी। वे सब जानते थे कि याशी उन सबके सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जबकि उनसे दूर जाते हुए उसे भी दुख हो रहा था। गाड़ी मलिक ड्राइव कर रहा था। जैसे ही याशी युग के साथ बैक सीट पर बैठी, उसने अपना सिर युग के कंधे पर रख लिया था। युग ने प्यार से उसके बालों को सहलाकर कहा,
तुम चाहो तो रो सकती हो, रोना बुरा नहीं है, लेकिन मॉम के सामने रोती तो उन्हें और बुरा लगता। सेलिन हमेशा मेरे साथ होती है, पर मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है डैड। क्या हम सब एक साथ नहीं रह सकते? भाई की शादी होने वाली है, क्या आप मुझे शादी में नहीं आने दोगे? याशी ने युग के कंधे से अपना चेहरा हटाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। याशी की आंखों में आंसू थे। युग ने उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया था। याशी का चेहरा युग की तरफ था। ऐसा कभी नहीं हो सकता था कि याशी अपने मुंह से कोई बात निकाले और उसे युग पूरा न करे। युग ने जल्दी से याशी के आंसुओं को साफ किया और उसे अपने सीने से लगाकर कहा, तुम आना चाहती हो तो जरूर आने दूंगा। चलो अब गुड गर्ल की तरह बन जाओ और रोना बंद करो। जानती हो ना, डैड को तुम्हारी आंखों में आंसू देखना पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, याशी ने जल्दी से अपने आंसू साफ करके कहा। वहीं उनकी बातें सुनकर गाड़ी ड्राइव कर रहे मलिक के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसने मन ही मन कहा, याशी बिल्कुल अपनी माँ की छवि है। सिर्फ ये दो ही हैं जो सर को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर सकती हैं। एक बेटी के आगे तो दुनिया का हर बाप हार जाता है, चाहे फिर वो माफिया किंग ही क्यों ना हो। युग ने याशी का दिल रखने के लिए उसे शादी में आने के लिए हाँ कह दी थी। उसके बाद वो खुश हो गई थी। पूरे रास्ते वो युग से बातें करती रही, जिसको युग सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे रहा था, जैसा वो कृषा के साथ करता था। हालांकि वो उसकी पूरी बातें गौर से सुन रहा था।
वहीं दूसरी तरफ युग और याशी के जाने के बाद ध्रुव कृषा के साथ इंडिया जाने के लिए निकल गया था। कल रात जो भी हुआ था उसके बाद से उसका ध्यान भले ही तारा से हट गया हो, लेकिन इंडिया वापस जाने के नाम से ही उसे फिर से तारा का ख्याल आने लगा। इस वक्त वे दोनों अपने प्राइवेट जेट में थे। ध्रुव ने कृषा से कहा, अच्छा मॉम, शादी राणा मेंशन में हो रही है तो क्यों ना हम शादी तक वहीं सेटल हो जाएं? वैसे भी वहां डैड का अलग फ्लोर है, मैं एडजस्ट कर लूंगा। रियली? कृषा ने भौंहें उठाकर कहा। तुम्हारे एडजस्ट करने से कुछ नहीं होगा। युग को नहीं पसंद है कि उसके फ्लोर पर कोई आए। बहुत मुश्किल से मुझे एडजस्ट करवाया था। नीचे अपने कमरे में रहना पड़ेगा और कोई प्राइवेसी नहीं होगी। एक बार फिर से सोच लो। सोच लिया मॉम, ध्रुव ने जवाब दिया। वो अभी भी राणा मेंशन में नहीं रहना चाहता था। कृषा ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया था। वो ध्रुव के चेहरे की तरफ देखकर अपने मन में बोली, योग बिल्कुल ठीक कहता है। तुम कब तक खुद से भागते रहोगे? एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि तारा का सामना नहीं करना चाहते? अचानक कृषा के दिमाग में कुछ सूझा। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट उभर आई थी। उसने ध्रुव से कहा, अच्छा ध्रुव, तुम चाहो तो राणा मेंशन में सेटल हो सकते हो, लेकिन मुझे हमारे विला में ही रहना है। और वो क्यों? ध्रुव ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि जिससे मेरा बेटा दूर भाग रहा है आखिर उसमें ऐसी क्या बात है, कृषा ने हंसकर कहा। ध्रुव एक पल के लिए बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो गया था। ध्रुव आगे कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि उसका हर शब्द उसके खिलाफ जाएगा। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगा। रात के लगभग 2:30 बजे के करीब वे इंडिया पहुंच चुके थे। कृषा जबरदस्ती ध्रुव को राणा मेंशन ले जाने के बजाय युग के विला में लेकर गई। घर में बिल्कुल शांति थी। इसका मतलब साफ था कि सब सो चुके थे। वैसे भी वहां वीर, अलीशा और तारा के अलावा और कोई नहीं रह रहा था। बाहर की सिक्योरिटी हमेशा की तरह टाइट थी। घर आते ही ध्रुव सीधा अपने कमरे में चला गया। वहीं कृषा का तारा से मिलने को मन कर रहा था। अगर देर रात नहीं होती तो वो सच में उसके कमरे में पहुंच जाती। सुबह तक वेट करना पड़ेगा। काश उन तीन पड़ावों की मालकिन उस महर रायचंद के बजाय तारा होती। लेकिन जिस हिसाब से युग ने उसके बारे में बताया था उसके हालात तो काफी खराब हैं। किसी तरह की माफिया प्रिंसेस तो दूर की बात है। उसे तो अपना घर खर्च निकालने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कृषा ने मुंह बनाकर कहा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तारा और उनके सोशल स्टेटस में इतना फर्क है। बस वो यही चाहती थी कि अगर तारा महर की जगह होती तो ध्रुव उससे भागने के बजाय अपने प्यार को खुलकर एक्सेप्ट करता। उसके दिल में ये डर नहीं होता कि वो एक इनोसेंट लड़की को माफिया की दुनिया में शामिल कर रहा है। कृषा सोने के लिए चली गई थी। घर में कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, इसलिए वीर, तारा और अलीशा तीनों ही काफी देर से उठते थे। सुबह के लगभग 9 बजे के करीब जब ध्रुव और कृषा एक साथ डाइनिंग टेबल पर थे तो घर में बिल्कुल सन्नाटा था, जैसे कोई वहां रहता ही ना हो। कृषा ने ध्रुव से हैरानी जताते हुए पूछा, आर यू श्योर ना कि वे तीनों यहीं पर रहते हैं? किसी और का पता नहीं, लेकिन वीर को अब तक उठ जाना चाहिए था। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, तारा को भी लेट तक सोने की आदत नहीं है, अचानक ध्रुव के मुंह से निकला तो कृषा उसकी तरफ अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए देखने लगी। कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट करते हैं, चलो ब्रेकफास्ट कर लो, फिर राणा मेंशन के लिए भी निकलना है, कृषा ने जवाब दिया और ध्रुव के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। वे दोनों आपस में बातें करते हुए नाश्ता कर रहे थे। इस बीच तारा उठकर नीचे आई थी। जब से उसने ध्रुव की शादी का सुना था तब से वो काफी उदास रहने लगी थी। तारा इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि ध्रुव और कृषा यहाँ पर आ चुके हैं। उसकी नींद भी ठीक से नहीं टूटी थी और वो पानी लेने के लिए नीचे आई थी। तारा ने इस वक्त लूज ट्राउजर के ऊपर लूज टी शर्ट पहना हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में अभी भी नींद थी। जैसे ही वो दीवार को पकड़ते हुए किचन की तरफ जाने लगी, ध्रुव और कृषा की उस पर नजर गई। चलो पता तो चला कि यहाँ कोई इंसान भी रहता है, लेकिन ये नींद में क्यों चल रही है? कहीं किसी चीज से टकरा कर गिर गई तो? कृषा ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। तारा के साथ कुछ दिन बिताने के बाद उसकी काफी आदतों को ध्रुव ने ऑब्जर्व कर लिया था। उनमें से एक ये थी कि वो सुबह नींद से जागने के बाद भी आसानी से उठ नहीं पाती थी। नहीं गिरेगी मॉम, क्योंकि वो नींद में नहीं है, बस हाँ उसका और सोने का मन कर रहा है, ध्रुव ने बिना किसी भाव के कहा। वो जानबूझकर तारा की तरफ नहीं देख रहा था। तुम ऐसे ही रूट बने रहना, कितनी क्यूट सी लड़की है और तुम इग्नोर कर रहे हो, कृषा ने मुंह बनाकर कहा। उसने जबरदस्ती ध्रुव को चेयर से उठाया और उसे धकेलते हुए तारा की तरफ कर दिया था। वहीं तारा नींद में चल रही थी, अचानक वो ध्रुव की चेस्ट से जा टकराई। जैसे ही तारा ने ध्रुव को अपने सामने देखा, उसकी सारी नींद टूट गई थी। वो एक पल के लिए हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन अचानक जब उसे एहसास हुआ कि ध्रुव सच में आ गया है, तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी। पर अगले ही पल वो मुस्कुराहट गायब भी हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि ध्रुव यहाँ उसके लिए नहीं बल्कि अपनी शादी के लिए आया है। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोगों की ख्वाहिश पर बहुत युग, कृषा और ध्रुव के फैमिली मोमेंट्स हो गए। अब तारा को भी थोड़ा मौका दीजिए, धीरे धीरे आपको वो सच में अच्छी लगने लगेगी। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले चैप्टर पर मिलते हैं। मैं रोज चैप्टर देने को तैयार हूँ, बस मेरे को 20+ समीक्षा चाहिए। देख लीजिए आपको क्या करना है।